KBR 가톨릭 방송에서
श्री साई राम साई वत्ता अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। इत देखो तो लगे कन्हैया, उत देखो तो दुर्गा मैया, इत देखो तो तू लगे कन्हैया, उत देखो तो दुर्गा मैया। नानक की मुस्कान है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। नाम की तू है माना, गौतम वाला तू है उजाला, राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। नीम तेरे की मीठी छाया, बदले हर चोले की काया, बदले हर चोले की काया। साईनाथ साईनाथ मेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तेरा दर है दया का सागर, सब मजहब भरते हैं गागर। तेरा दर है दया का सागर, सब मजहब भरते हैं गागर। पावन पारस तेरी आग, तेरा पत्थर कण कण राग, तेरा पत्थर कण कण राग। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने।
जय श्री साई राम। शिरडी साई बाबा, सत्य साई बाबा, प्रेम साई बाबा। कहा जाता है भगवान तीन अवतारों में अवतरित हुए। शिरडी साईं बाबा पहले आए तो दिव्यता को दिखाने के लिए, दिव्यता को व्यक्त करने के लिए। उसके बाद है सत्य साईं बाबा, दिव्यता को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए। अब आएंगे प्रेमा साईं, जो दिव्यता को फैलाएंगे चारों ओर। अगर अंग्रेजी में कहा जाए, शिरडी साईं बाबा केम टू रिवील डिविनिटी, सत्य साईं बाबा केम टू अवेकन डिविनिटी, प्रेम साईं विल कम टू प्रोपोगेट डिविनिटी। आज जरा बात करते हैं हम शिरडी साईं बाबा के ऊपर। कहा जाता है 28 सितंबर 1835 28 सितंबर 1835 को शिरडी साईं बाबा अवतरित हुए थे, और अक्टूबर 1918 में विजयदशमी का दिन था, दशहरे का दिन था। उन्होंने उस दिन अपना शरीर त्याग दिया और महासमाधि ले ली। 83-84 वर्ष की उम्र रही होगी। लेकिन आज तक लोग शिरडी में जाके अपनी भावना, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं उनकी समाधि में जाकर। यह भी कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा जी ने कुछ ऐसे 11 वचन कहे जिसको हम बोलते हैं बाबाज 11 एश्योरेंसेस। आज जरा उन पर ध्यान दें हम। पहला वचन था, जो शिरडी आएगा आपत दूर भगाएगा। यानी का तात्पर्य, हू एवर पुट्स हिज फीट ऑन शिरडी हिज सफरिंग वुड कम टू एन एंड। क्या इसका अर्थ हम ये लगा लें कि जो लोग शिरडी नहीं जाएंगे उनकी सफरिंग, उनका दुख, उनकी आपत्ति दूर नहीं होगी? कदापि नहीं। जो शिरडी आएगा आपत दूर भगाएगा, जो शिरडी पहुंचता है उसके दुख और दर्द दूर होते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर इसका आंतरिक कारण समझा जाए, इनर सिग्निफिकेंस समझा जाए, जो परमात्मा के रास्ते पे चलेगा उसके जीवन से दुख हट जाएंगे। शिरडी का मतलब केवल शिरडी स्थान से नहीं लेना चाहिए। शिरडी का अर्थ ये भी कह सकते हैं जब परमात्मा हो। शिरडी में शिरडी साईं बाबा वास करते हैं, तो क्या शिरडी साईं बाबा कहीं और वास नहीं करते? वह सर्वव्यापी है, ही ओमनी प्रेजेंस। लेकिन हमारी यात्रा अंतर की होनी चाहिए। वी नीड टू गो इनवर्ड्स, वी नीड टू गो टूवर्ड द स्पिरिचुअल जर्नी। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। ही हु क्लाइम्स द स्टेप ऑफ समाधि हिज सॉरो एंड सफरिंग शैल सीज। चढ़े समाधि की सीढ़ी, ध्यान दीजिए आप चढ़ रहे हैं, उतर नहीं रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ये गोइंग अपवर्ड। कहां? समाधि की सीढ़ी। लोगों ने इस बात को इस प्रकार से ले लिया कि बाबा की समाधि बनी हुई, आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएं, वहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दें, आपके जीवन से सारे दुख हट जाएंगे। कभी आपने विचार किया, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? भारतवर्ष में अधिकतम पहाड़ों के ऊपर मंदिर बने हुए हैं, कहीं वैष्णो देवी, कहीं महा अमरनाथ की यात्रा में लोग जाते हैं, कहीं बद्रीनाथ, कहीं केदारनाथ, कहीं मनसा देवी। पहाड़ों के ऊपर मंदिर बने हुए हैं और लोग चढ़कर, चलकर ना जाने कितने किलोमीटर की यात्रा करते ऊपर पहुंचते हैं। क्या आवश्यकता थी? क्या मंदिर नीचे नहीं बना सकते थे, समतल पर, ऑन प्लेन्स पर, प्लेन लैंड पर? ये एक सिंबॉलिक है, समझिएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, जो इंसान समाधि की सीढ़ी चढ़ता है उसके जीवन से दुख हट जाते हैं। लेकिन क्या दुख? कौन सी सीढ़ी, कौन सी समाधि? समाधि का अर्थ है समधि। जब आपकी धी एक जैसी हो जाए, जब आपकी बुद्धि एक जैसी हो जाए, व्हेन यू कम टू द लेवल ऑफ इक्वेनिमिटी, इक्वल माइंडनेस, दुख हो या सुख हो, सर्दी हो या गर्मी हो, आपको फर्क ना पड़े, आपका व्यवहार एक जैसा रहे, आपके मन की स्थिति स्टेबल रहे, एक जैसी रहे, डामाडोल ना हो, तस से मस ना हो, समाधि का अर्थ यही है, जहां आपकी धी एक जैसी हो जाए, जहां आपकी धी, आपकी बुद्धि, आपके इंटेलेक्ट, आपके डिस्क्रिमिनेशन पावर, आपकी विवेक शक्ति बैलेंस्ड हो जाए। इसलिए कहा गया समाधि की सीढ़ी चढ़ी जाती है जब आप ऊपर की ओर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब आप बुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी बुद्धि को निर्मल करें और अपनी बुद्धि को तीव्र करें और बुद्धि के पास पहुंचने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। दो आई बी नो मोर इन फ्लैश एंड ब्लड, आई शेल एवर प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। त्याग शरीर चला जाऊंगा, मैं अपना शरीर छोड़ जाऊंगा, लेकिन भक्त अगर मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़ा आऊंगा। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने क्या बोला? उन्होंने कहा, भाई देखो ऐसा है, इफ यू कैन कॉन्टेम्पलेट ऑन मी फॉर ओनली 11 seconds, आई विल अपियर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर तुम मेरे ऊपर ध्यान लगाते हो केवल 11 क्षण के लिए, 11 सेकंड के लिए, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन यहां बात करें ध्यान लगाने की, यू हैव टू बी सीरियस। शरीर नहीं है तब भी भगवान आपके सामने आएंगे, इतिहास साक्षी है। लोगों ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, राम के दर्शन किए, दुर्गा के दर्शन किए, शक्ति के दर्शन किए, पुकारा है तो भगवान आए ना। लेकिन भक्त हेतु दौड़ा चलाऊंगा, त्याग श्री चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, भक्त के लिए दौड़ के आऊंगा। प्रहलाद के लिए भगवान नहीं आए, धूर के लिए भगवान नहीं आए। प्रहलाद को तो फिकवा दिया पहाड़ों से, जल में डुबोने का प्रयास किया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन कदापि उसे कुछ नहीं हुआ। तो आपको उस प्रकार की भक्ति भी चाहिए पहले। तीसरा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, ट्रस्ट एंड फेथ इन मी एंड समाधि वुड फुलफिल योर विशेस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। आपको एक विश्वास चाहिए, एक फेथ चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस प्रॉब्ली इज द राइट वर्ड। आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर मैं समाधि पे जाता हूँ मेरी इच्छा पूरी होती है, लेकिन लोगों ने सोचा चलो भाई शिरडी बाबा की समाधि पे चलते हैं, सत्य बाबा की समाधि पे चलते हैं, वहां जाके अपनी सारी इच्छाएं व्यक्त करके आ जाएंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये धारणा गलत है। समाधि आपकी पूरी याद कर देगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी, क्योंकि आपकी बुद्धि तब तक निर्मल हो जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आपकी बुद्धि एक प्रकार से हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, इक्वानिमिटी में आ जाएगी, तो आपकी सारी बाधाएं वैसे दूर हो जाएंगी। पांचवा पॉइंट, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बहुत बड़ी बात बोली है। आई एम एवर अलाइव, नो दिस ट्रूथ बाय द एक्सपीरियंस ऑफ योरसेल्फ। पता क्या होता है, लोग जब पुटा पर्ची जाना चाहते थे, कई लोग पूछते थे, अरे कौन बालों वाले बाबा को मानते हैं, वहां जा रहे हैं आप, वैसा करते हैं। अच्छा, हम लोग बोलते हैं भाई ऐसे करो, एक बार पुट्टा पर्ची होकर तो आओ, दर्शन करके तो आओ, देख के तो आओ। भगवान बाबा कहते थे कम एंड एक्सपीरियंस एंड देन बिलीव। आप आए यहां पर, अनुभव करें तब विश्वास करें कि बाबा कौन है। मुझे सदा जीवित ही जानो। दूसरी बात, जरा आप विचार कीजिएगा, आप मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं, आदि आदि। लेकिन जब वह भगवान की मूर्ति के आगे, तस्वीर के आगे अपना माथा टेकते हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? क्या कभी आपने उस वक्त ये सोचा कि सामने जो मूर्ति है उसमें जान है, उसमें जीवन है? क्या वो अलाइव है, जीवित है? नहीं, हमने मूर्ति समझी। आप जरा सोचिएगा, आप घर में किसी व्यक्ति से दूरभाषा पे, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बुराई चल रही है, और सामने भगवान की फोटो लगी है दीवार पे। भगवान सत्यनारायण बाबा ने क्या बोला? डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स एस्पेशली इन देयर एब्सेंस। किसी की बुराई नहीं करनी है, खासकर जब वो वहां ना हो। लेकिन भाई कितना मजा आता है, ये तो मजा बात आता हमारे को ऐसी बातें करने में। कभी आपने सोचा कि आप फोन पे जो बातें कर रहे हैं, इतने गपशप मार रहे हैं, और सामने जो फोटो है ही इज़ अलाइव, वो आपकी बात सुन रही है? नहीं, हमने कभी परमात्मा की फोटो को भगवान नहीं माना, केवल पत्थर की मूर्ति माना, फोटो माना। पहले आपको यह अनुभव करना होगा कि भगवान सारी दिशाओं में ही सर्वव्यापी, ओमनीप्रेजेंट, सब जगह। सदा जीवित ही जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। ते तब होगा जब परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करेंगे। तो मंदिर में जाके भगवान को हम मूर्ति में देख लेते, रति भर के लिए, क्षण भर के लिए, लेकिन कदापि हमने ये सोचा कि परमात्मा हमारे भीतर भी मौजूद है। मेरी शरण आखाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। Show me anyone who sought refuge in me and been turned away. जो कभी मेरी शरण में आ जाए वह खाली नहीं जा सकता। लेकिन हम भगवान के शरण में गए कब हैं भाई? हम तो केवल माथा टेक कर आए, वो भी इसलिए कि मन में इच्छाओं का अंबार भरा हुआ है। भगवान से हमें काम कराना है, वी आर डीलिंग विद गॉड। हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं बोला परमात्मा हम आपके शरण में आए, जो करने कर लो। कभी हमने ये नहीं बोला राजी है उसमें जिसमें हो तेरी रजा। कभी हमने भगवान से ये नहीं बोला भगवान अब आपके चरण में आ गया हूं, अब मेरा गिरेबान आप पकड़ ले, मेरा हाथ आप पकड़ ले, मेरी उंगलियां पकड़ ले। जरा विचार कीजिएगा, छोटा बच्चा जो होता है वो अपने आप कुछ नहीं कर पाता, जो बेबी है, जो इन्फेंट है। लेकिन मां को पता होता है मेरे बेटे को क्या चाहिए, उसे कब दूध पिलाना है, कब सुलाना है, कब उसे घुमाना है, कब जगाना है, सब जानती है। क्या हम भगवान के साथ इस प्रकार का रिश्ता नहीं जोड़ सकते? हाँ भगवान, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, भाई मैं आपको छोड़ रहा हूं, मैं आपको शर्म में आया, नाउ यू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। सातवां पॉइंट है, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इन वट एवर फेथ मैन वर्शिप मी, इवन सो डू आई रेंडर टू देम। आप भगवान को जिस रूप में देखते हैं, भगवान आपसे वैसे रूप में प्रकट होते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को शिव के रूप में देख रहे हैं, दुर्गा के रूप में देख रहे हैं, या शिरडी बाबा सत्य साहब बाबा के रूप में देख रहे हैं, या राम कृष्ण के रूप में देख रहे हैं। आप भगवान से किस प्रकार का संबंध बना रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू आर बिल्डिंग विद द गॉड। कभी आपने विचार किया, शबरी जंगल में रह रही है, वन में रह रही है, रोज बुहारी देती है, बाहर शायद मेरे राम आ जाएंगे, विथ फुल कॉन्फिडेंस। भगवान राम को वहां आना ही पड़ा नंगे पांव चलकर। भगवान कृष्ण विदुर के घर पहुंच गए, एक भावना थी, उन्होंने परमात्मा से एक रिश्ते एस्टेब्लिश किया था, एक संबंध एस्टेब्लिश किया था। द्रौपदी जिसको नग्न करने की कोशिश की जा रही थी, प्रयास किया जा रहा था, दुशासन उनके साड़ी खींची जा रहा था, द्रौपदी ने आंखें बंद करके केवल अपने भगवान को बुलाया, हे अंतर्यामी मेरे सामने आ जाओ, मेरी रक्षा करो। भगवान आ गए। किस रूप से आप भगवान से रिलेशनशिप बनाते हैं, एज फ्रेंड्स, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा थे, वैसे हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो, लेकिन ना हमने बंधु बनाया ना हमने सखा बनाया। एक पिता शाम को घर पहुंचता है अपने ऑफिस से, सामने देखता है एक बेटा बाहर खेल रहा है, वो कहता है हाय डैड हाउ आर यू, दूर से हाथ हिलाता है, बाप भी हाथ हिला देता है। वो पिता श्री अंदर आता है, बेटा दौड़ता हुआ आता है, टीवी देख रहा होता है, कहता आप आ गए, मेरे क्या लेके आए हैं, अपना सामान ही चला गया। एक छोटा बच्चा मां की गोद में है, देखता है पिताजी आ गए, जाकर लिपट जाता है गले से, पिताजी भी उसको लिपट जाते हैं, उसको प्यार करते हैं। पिता के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन भगवान का रिलेशनशिप द वे ऑफ एक्टिंग सबके साथ अलग रहा है। क्यों? क्यों तीनों बच्चों ने अलग प्रकार से व्यवहार किया। अगर हम परमात्मा से उसी प्रकार का व्यवहार करें, दोस्त माने, तो भगवान हमारे साथ दोस्त बन के रहेंगे। माता पिता माने तो माता पिता बन के रहेंगे। जैसा बहाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवीं बात करते हैं, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आई विल कैरी योर बर्डन ऑलवेज, देयर इज नो डाउट, दिस इज माई प्रॉमिस। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। भगवान ने कह दिया भाई देखो मैं तुम्हारी पूरी देखरेख करूंगा। योगाश्रम वहां में हूं, यानी कि आई टेक कंट्रोल ऑफ यू एंड प्रोटेक्ट यू, गिव यू द नेसेसिटीज। कभी आपने विचार किया कि एक पत्थर के अंदर कीड़ा रहता है, उसको भी भोजन मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं, वो भी अपनी जीविका गुजार रहे हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी अपना जीवन जी रहे हैं, परमात्मा उनको भी देख रहे हैं, तो क्या आपको नहीं देखेगा? लेकिन हमने अपना भार भगवान को नहीं दिया। भार पे याद आया, एक व्यक्ति रेलगाड़ी में जा रहा था, ट्रेन में चढ़ा, रेलगाड़ी में चढ़ा, उसके हाथ में दो तीन बैग थे, उसने सारे बैग जो सारे बक्से जो सूटकेस थे अपने सर पे रख लिया, गाड़ी चल पड़ी और सारा भार अपने सर पे लेके बैठा हुआ, खड़ा हुआ है। लोगों ने कहा महोदय आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सर में से बोझ उतार के नीचे रख दीजिए गाड़ी पे, प्लेटफॉर्म पे या फ्लोर पे। वह आदमी बोलते नहीं, टिकट मैंने खाली अपने लिए ली है, तो मुझे अपना भार खुद उठाना पड़ेगा। लोग बोले महोदय अगर आप सामान को सर पे रखेंगे तब भी सारा भार ट्रेन के ऊपर है, अगर आप सामान उठा के रख देंगे नीचे तब भी सामान जो है, और आप ट्रेन में चल रहे हैं, भार उतना ही पड़ रहा है ट्रेन के ऊपर, लेकिन आपके सर का बोझ कम हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान हमारा बोझ तो ढो ही रहे हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की कि अपना भार थोड़ा भगवान के हाथ में दे दें। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। हैव यू एवर ट्राई टू गिव अवे योर डिफिकल्टीज, योर प्रॉब्लम, योर बैड हैबिट्स टू गॉड? इतनी बुराइयां हमारे ने भरी हुई हैं, वो भार है, वो बोझ है। भगवान बाबा क्या बोलते हैं, लेस लगेज मोर कम्फर्ट। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में लिखा होता है लेस लगेज मोर कम्फर्ट, सामान कम होगा यात्रा सुखद रहेगी। यही तो सारा भार है, अहंकार का भार, अपने ज्ञान पर अहंकार, अपने बुद्धि पर अहंकार, अपने रूप पर अहंकार, पैसे का अहंकार, पद का अहंकार, शक्ति का अहंकार, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या, ये सारे बाहर के चिन्ह हैं। दे आर द इनर एनिमीज, सिक्स इनर एनिमीज, सिंबल ऑफ द वेट यू आर कैरिंग। नवी बात, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। इफ यू सीक माई एडवाइस एंड हेल्प, आई शेल इट शेल बी गिवन टू यू एट वंस। आ सहायता लो भरपूर, भगवान आपको सहायता देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आप जरा विचार कीजिएगा भगवान की सहायता कहां से मिलती है। क्या हम मंदिर में जाके पुजारी से पूछें, क्या मस्जिद में जाके पूछें, गुरुद्वारे में जाके पूछें, गिरजाघर में चर्च में जाके पूछें? हमें कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कहां से पूछें? आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको सहायता चाहिए, आपको सलाह मशवरा चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए, तो भगवान से मांगिए। लेकिन कैसे मांगोगे? व्हाट इज द टेक्निक ऑफ आस्किंग हेल्प, सीकिंग एडवाइस? गो इनवर्ड, अंतर की यात्रा करें, बैठ के अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से पूछें। सारी समस्याओं का हल आपके भीतर है। कभी आपने दो पल के लिए आंखें बंद की, अपने आप से बात की, वार्तालाप की? कभी आपने आपसे पूछा? गॉड रिजाइड्स विद इन, परमात्मा आपके भीतर रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। लेकिन अंतर की यात्रा करके कभी अपने आप से चर्चा तो करो, बात तो करो, एटलीस्ट फाइंड सम टाइम टू टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करने का समय तो निकालो भाई। सुबह से लेकर शाम तक रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, संसार भर की किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट में लगे रहते हैं, लेकिन कभी हमने अंतर में नहीं जाकर। वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन इंटरनेट बट नॉट ऑन इंटरनेट। सुबह से लेकर शाम तक सर्च चल रहा है, गूगल सर्च, याहू सर्च, लेकिन अंदर की सर्च, इंटरनेट सर्चिंग, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, मैं कहां जा रहा हूं? नहीं, विचार कीजिएगा। दसवां पॉइंट, मुझ में लीन वचन मन का आया, उसका ऋण न कभी चुकाया। आई एम इंडेप्टेड टू हिम दैट इज एब्जॉर्ब इन मी विद थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स। जो व्यक्ति मुझ में लीन है मन से, वचन से, काया से, उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। अर्थात हार्मनी इन थॉट वर्ड एंड डीड। आपको एकता चाहिए, आपको पवित्रता चाहिए, किसमें? मन में, वाणी में, कर्मों में। जो आपका मन बोल रहा है, जो आपकी वाणी बोल रही है, जो आपके कर्म कर रहे हैं, एक जैसे हों, पवित्र हों। जिस दिन आपने ये कर लिया, पवित्रता का अर्थ है भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हों, जो भगवान ने आपको संदेश दिया है, जो आपको आदेश दिया, उस पे चल रहे हों, तो भगवान आपको ऋणी बन जाता है। अगला पॉइंट है, धन्य धन्य वह भक्त अन्य मेरी शरण तक जिसे न अन्य। वो भक्त धन्य है जिसके अंदर अन्य भक्ति है। भगवत गीता का 12वां अध्याय क्या बोलता है? अनशेकेबल फेथ, अनन्य भक्ति। जिसके अंदर अनन्य भक्ति हो, वो मेरी शरण में आ जाता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। देयर शैल बी नो वॉन्ट इन द हाउस ऑफ माई डिवोटीज हु हैज अनन्य भक्ति, अनशेकेबल डिवोशन। जो मेरे पे संपूर्ण रूप से विश्वास करता है, उसकी सारी बाधाएं मैं लुप्त कर देता हूं, मैं हटा देता हूं। ये 11 वचन आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये 11 वचन, मान लीजिए आपकी 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, जब सारी एक हो जाए, परमात्मा के रास्ते पे हो जाए, परमात्मा आपसे दूर नहीं है, आप परमात्मा से दूर नहीं है। जिस प्रकार से सारी नदियां सागर में समा जाती हैं, सागर बन जाती हैं, आप भी परमात्मा में समा जाएंगे और भगवान के साथ एक हो जाएंगे। जय श्री साई राम।
जन